वहीं अरमान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। वो तुरंत वीर रायचंद के सामने खड़ा होकर अपनी शर्ट का कॉलर स्टाइल से ठीक करने लगा। तब वीर रायचंद गुस्से से बोला, आखिर कैसे किया तूने ये सब कुछ? तूने तो कोई मीटिंग ही नहीं की थी, तो फिर कैसे लगा तेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट्स? अरमान सिंघानिया अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए बोला, श्श। अरमान सिंघानिया के सामने ज्यादा ऊंची आवाज में अगर कोई बात करता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, समझे तुम? और तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे किया मैंने ये सब कुछ? अब आगे, मुझे लगता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है मिस्टर वी रायचंद कि अरमान सिंघानिया यहाँ खड़ा होकर तुम्हें ये बताए कि ये सब कुछ मैंने कैसे किया, समझे तुम? वी रायचंद तिरछी मुस्कुराहट से उसकी ओर देखकर बोला, भले ही तूने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए हो, लेकिन याद रखना, एक दिन मैं सब कुछ तुझसे सूद समेत वापस छीन लूंगा। अरमान उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसकी हंसी उस वक्त इतनी ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि एक पल को देव के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो गया था, क्योंकि अरमान के इस तरह से हंसने का मतलब वो अच्छी तरह से समझता था और वो सोच रहा था कि इतना गुस्सा होने के बावजूद भी वीर रायचंद अभी तक जिंदा कैसे है। लेकिन अरमान उसकी ओर देखकर बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वीर रायचंद, तुम कब आओगे और कब मुझसे मेरा सब कुछ छीनोगे? ऐसा कहते हुए अरमान ने अपने कॉलर को ठीक किया और जल्दी ही वहां से जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि अरमान उस केबिन से बाहर निकल पाता, वीर रायचंद की एक आवाज वहां गूंजी। वो वार्निंग देते हुए बोला, अरमान सिंघानिया, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत पर, ताकत पर? याद रखना, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारी वो खूबसूरत बीवी भी जो मैंने हॉस्पिटल में देखी थी। मैं जानता हूँ कि अब तक तुमने ये तो पता लगा ही लिया होगा कि तुम्हारी शादी में तुम्हारी होने वाली पत्नी को भगाने के पीछे मेरा ही हाथ था। अरमान सिंघानिया, एक लड़की शादी से भागी तो तुम्हें इस शादी के इस मंडप में दूसरी लड़की मिल गई शादी करने के लिए। वाकई मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत काफी तेज है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी वो किस्मत तक छीन लूंगा अरमान सिंघानिया। और वैसे भी, जब से मैंने तुम्हारी खूबसूरत बीवी को देखा है ना, सच में ऐसा लग रहा है कि उसके बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगा। बड़ी कमाल की चीज चुनी है तूने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। जैसे ही वीर रायचंद ने ये कहा, अरमान के हाथों की क्या उसके पूरे सर की नसें तन गई। इतना ही नहीं, उसकी आंखें नफरत से एकदम बाहर निकलने को तैयार थी। वहीं देव ने जैसे ही अरमान का इस तरह का रूप देखा, वो अपना थूक निगलने लगा। ऐसे लगने लगा मानो कि देव का गला डर से पूरी तरह से सूख गया हो। वहां का माहौल उस वक्त ऐसा हो गया था मानो कि वहां सांस लेने में भी घुटन सी महसूस होने लगी हो। वहीं वीर रायचंद, जो कि आस्था के बारे में सोचते हुए अपनी जबान पर अपनी जीभ फेर रहा था, उस वक्त वो बड़ा ही घटिया और गंदा लग रहा था। एक पल को तो देव को भी उसे देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अरमान का तो गुस्सा उसकी हद से बाहर हो चुका था। और अगले ही पल अरमान उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और अचानक से अरमान ने बिना सोचे समझे वीर का गला जोरों से पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वीर रायचंद के जितने भी गार्ड्स थे उस वक्त अरमान को पकड़ने में नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अरमान पर तो उस वक्त अलग ही तरह की धुन सवार थी। उसके कानों में तो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वीर के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे। वहीं वीर अपने आप पर आई हुई इस मुसीबत से पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी इस बात का अरमान को इतना ज्यादा बुरा लगेगा। एक पल को तो वीर की पूरी सांस रुक चुकी थी और उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। उसकी आंखें एकदम बाहर आने को तैयार थीं, लेकिन अगले ही पल अरमान ने उसे छोड़ दिया। और ना जाने अरमान के दिमाग में क्या आया, अचानक से उसके चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई और अपने आप को शांत काम करते हुए तुरंत वीर के पास जाकर उसने गिलास भरकर पानी उसके मुंह में उड़ेल दिया और फिर बोला, शांत हो जा वीर रायचंद, इतनी आसानी से मैं तेरी जान नहीं लूंगा और वैसे भी अभी तेरे जाने का समय नहीं आया है। उसने फिर वीर की पीठ को दो से तीन बार थपथपाना शुरू कर दिया और वीर अरमान की इस तरह की हरकत देखकर काफी हद तक हैरान हो चुका था और जल्दी ही वो वहां से बाहर निकलने लगा। अरमान के बाहर निकलते ही वीर के चेहरे पर कितना सारा पसीना था और वो अपने पसीने को अपने हाथों से पोंछ रहा था। तब उसके गार्ड्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वीर रायचंद की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उस वक्त बेहोश हो चुका था, क्योंकि अरमान ने उसका गला बड़ी ही बुरी तरह से दबाया था। उसके बाद उसके आदमियों ने जल्दी ही वीर रायचंद को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और साथ ही उसकी माँ को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। वहीं अरमान जल्दी ही गाड़ी में जाकर बैठ गया था। देव की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान की ओर देख सके। कहीं ना कहीं देव के मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर अरमान सिंघानिया ने वीर रायचंद को जिंदा कैसे छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सब सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान सिंघानिया से अपने सवालों का जवाब पूछ सके। वहीं अरमान एकदम खामोश बैठा हुआ था। हालांकि जब भी अरमान गाड़ी में बैठा होता था तो अपने लैपटॉप या फोन वगैरह में कुछ ना कुछ अपने काम के शेड्यूल वगैरह चेक करता था, लेकिन आज ना तो उसने अपने लैपटॉप को छुआ तक नहीं और ना ही उसने अपने फोन को छुआ था। उसके लैपटॉप और फोन भी चीख चीख कर कह रहे थे कि आज हमारा मालिक कहाँ गया, मर गया है, क्या वो जिंदा है, उसका कहीं कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। वहीं अरमान एकदम शांत था और देव को इस तरह की शांति देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था मानो कि ये आने वाले तूफान की पहले की शांति हो। वेल, जल्दी ही अरमान मेंशन में चला गया था क्योंकि बेसिकली अरमान के ऑफिस जाने का टाइम था, लेकिन आज अरमान ने अपने सारी मीटिंग सब कुछ कैंसिल कर दिए थे और उस वक्त वो सीधा घर पर आ चुका था। जैसे ही वो घर आया, पूरे घर में उसे अजीब सी खामोशी महसूस हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो घर आते ही आस्था को देखना चाहता था, लेकिन आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। बेसिकली आस्था इस वक्त हॉल में दादाजी के पास ही बैठी रहती थी या फिर कहीं गार्डन में घूमती हुई दिखाई देती थी, लेकिन ना तो आस्था दादाजी के पास थी और ना ही गार्डन में थी, क्योंकि अरमान भले ही ऑफिस में काम करता था लेकिन सीसीटीवी कैमरा के थ्रू, जो कि उसने अपने हॉल में और कुछ ऐसी जगह लगवा रखे थे जिसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था, ऑफिस में बैठकर वो आस्था पर पूरी नजर रखता था। लेकिन आज आस्था को घर पर ना पाकर उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट के चक्कर में उसने अभी तक घर की सीसीटीवी कैमरा की आज की फुटेज चेक नहीं की थी। तो जैसे ही वो घर आया, उसने देखा दादाजी अकेले बैठे हुए थे। उसके बाद उसे लगा कि शायद आस्था की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हो सकता है कि शायद वो सो रही हो। कुछ सोचते हुए अरमान फाइल लेने के बहाने से अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन दादाजी ने कहीं ना कहीं अरमान की आंखों की बेचैनी को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था और वो ये भी जानते थे कि उनका अकड़ू और खड़ूस पोता एक बार भी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगा कि उसे आस्था के बारे में जानना है। फिलहाल जैसे अरमान अपने कमरे में गया और वहां जाकर उसे आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी, अब तो अरमान की बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बार वॉशरूम भी नॉक किया था, लेकिन वॉशरूम में भी आस्था नहीं थी। जल्दी ही पूरे घर में एक बार अच्छी तरह से नजरें घुमाने के बाद अरमान हॉल में आकर बैठ गया
और तेज आवाज में बोला, राजेश, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आओ। क्योंकि आज सुबह से अरमान ने ब्लैक कॉफी नहीं पी थी, उसे उसकी थोड़ी सी तलब लग रही थी, तो इसीलिए उसने राजेश को उसकी फेवरेट ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहा था। अरमान को लगा था कि अगर राजेश को वो ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहेगा तो दादाजी आस्था को ब्लैक कॉफी लाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि दादाजी ने ऑलरेडी बोला था कि उसके लिए खाना नाश्ता आज से सिर्फ और सिर्फ आस्था ही बनाएगी, चाहे वो पसंद करे या ना करे। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए उसने राजेश को तेज आवाज में ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहा था। बदले में दादाजी, जो कि उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे, अपने चश्मे लगाए हुए केवल न्यूज़पेपर में से हल्की सी तिरछी नज़र करके अरमान की ओर देख रहे थे। उसके बाद वो एक बार फिर न्यूज़पेपर की हेडिंग में खो गए। वहीं अरमान टांग पर टांग रखकर बैठा था, लेकिन बार बार उसकी टांगों में बेचैनी हो रही थी। उसके बाद वो अपना गला ठीक करने लगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन आस्था उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अरमान की नज़रों में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। वहीं देव भी हैरानी से एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं वो भी अरमान के अंदर आए बदलाव को देख रहा था और समझ रहा था कि शायद उसका बॉस कुछ पूछना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। क्योंकि अरमान की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, उसका पावर, उसका घमंड उसे ये इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वो ये पूछ सके कि आस्था कहाँ गई है। अरमान ने सीधा सीधा आस्था के बारे में ना पूछते हुए दादाजी की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है दादाजी, आज घर में इतनी शांति क्यों है, बाकी सब लोग कहाँ गए? तब दादाजी के चेहरे पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई थी और वो थोड़ा सा अनजान बनते हुए बोले, अरे बेटा, तू तो जानता ही है वो आहान मुझे थोड़ी ना बताकर जाता है, कॉलेज के नाम पर मौज मस्ती करने के लिए पक्का कहीं गया होगा। फिर दादाजी चुप हो गए थे और अखबार में डूब गए थे। अब अरमान जिसके बारे में जानना चाहता था उसके बारे में तो वो जान नहीं पाया, तो थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, अच्छा दादाजी, क्या आहान ही सिर्फ इस घर में रहता है, और भी कई लोग रहते हैं ना, बाकी सब लोग कहाँ गए? तब दादाजी कन्फ्यूजन से पूछने लगे, अरे बेटा, तू किसके बारे में जानना चाहता है, साफ साफ बताना, मुझे तेरी बातों का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। तब अरमान एकदम से बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में भी नहीं जानना चाहता हूँ। ऐसा कहकर अरमान जल्दी ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, दादाजी की ओर देखकर कहता है, अच्छा दादाजी, मैं अब चलता हूँ, वैसे मुझे कुछ जरूरी काम है, और बाहर दरवाजे की ओर चल दिया। देव भी ठीक उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी दादाजी सोचने लगे, अरे यार, मैं भी इस खड़ूस सिंघानिया से ऐसी कैसी उम्मीद कर सकता हूँ कि ये मुझसे सीधे सीधे अपनी पत्नी आस्था के बारे में पूछेगा, जबकि मुझे पता है कि इसकी ईगो इतना बड़ा है जो कभी भी उसे आस्था के बारे में नहीं पूछने देगा। तब दादाजी अरमान को जाता हुआ देखकर शरारती अंदाज में बोले, अरे बेटा रुको, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया,